रात के लगभग 9 बज रहे थे। आयु रूम में आराम कर रही थी जबकि आरव उसके लिए खाना लेने के लिए नीचे आया था। खाना लेने से पहले उसने कबीर को कॉल करके मिस्टर लूथरा के साथ मीटिंग तय करने के लिए कहा था। थोड़ी देर पहले ही आरव और आयु के बीच की सारी दूरियां मिट गई थीं और अभी आरव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो आयु को मिस्टर लूथरा से मिलना चाहता था, जबकि वो अच्छे से जानते थे कि माहिरा को आरव ने आयु की वजह से छोड़ा था। ऐसे में वो आयु की जान भी ले सकते थे। आरव नीचे आया तब गौरवी जी और कबीर साथ में डाइनिंग टेबल पर थे। उसे देखते ही गौरवी जी ने कहा, मैं बस तुम्हें कॉल करने ही वाली थी, आयु कहाँ है, उसे बोलो डिनर के लिए आ जाए। दादी, उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, वो नीचे नहीं आ पाएगी, तभी मैं खाना लेने के लिए आया था, आरव ने बताया और वहां बैठकर एक प्लेट में खाना सर्व करने लगा। खाना सर्व करते हुए आरव की नज़र कबीर पर पड़ी, जो सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। कबीर की नज़रों को समझते हुए आरव ने कहा, ऑफिस की बातों को लेकर परेशान मत रहा करो, हम वो वहां पर सॉल्व कर लेंगे, घर पर हो तो रिलैक्स रहो। कबीर ने हाँ में सिर हिलाते हुए हामी भरी। वहीं गौरवी जी ने आयु की तबीयत खराब होने का सुना तो वो थोड़ा घबरा गई। उन्होंने कहा, कैसी बीमार डॉक्टर है तुम्हारी, अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो अयान या किसी और डॉक्टर को कॉल कर लो। अरे नहीं दादी, वो बस थोड़ी थकी हुई है, उसने तो कहा था नीचे आने के लिए लेकिन मैंने ही मना कर दिया था, आरव ने बहाना बनाया। वो खाने के साथ ऊपर जा ही रहा था तभी गौरवी जी ने पीछे से कहा, तुम दोनों के बीच सब ठीक है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों के बीच किसी तरह की बहस हुई हो और फिर वो नीचे आने से मना कर रही हो, जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। कम ऑन दादी, आपको हर बार मेरी ही गलती क्यों दिखाई देती है, और सब ठीक है, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद ऊपर चलकर देख लीजिए, आरव ने आइज रोल करके कहा। गौरवी जी ने नामे सिर हिला दिया। उसके बाद आरव वहां से खाने के साथ ऊपर पहुंचा। ऊपर आते ही उसने देखा आयु को नींद आ चुकी थी, उसने आरव का शर्ट पहन रखा था। आरव ने रूम का दरवाजा बंद किया और उसके पास आ गया। मुझे पहले ही पता था कि मेरे आने तक तुम सो जाओगी, खैर मुझे तुम्हें जगाना भी नहीं है, आरव धीरे से बोला और फिर वहीं बैठकर अकेले खाना खाने लगा। आरव के दिमाग में इस वक्त काफी कुछ चल रहा था। उसने अपने मन में कहा, माही को वापस आने में ज्यादा टाइम नहीं रहा है, उसके आने से पहले मुझे सब सेट करना होगा, मैं मिस्टर नाहर लूथरा के साथ दुश्मनी मोल नहीं ले सकता, माहिरा के एब्सेंस में खान के खिलाफ लड़ने में वही मेरी हेल्प करेंगे और मुझे आयु को भी माहिरा से दूर रखना होगा। सोचते हुए आरव ने आयु के चेहरे की तरफ देखा, जो सुकून के साथ सो रही थी। नींद में भी उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर आरव के फेस पर भी स्माइल आ गई। डिनर हो जाने के बाद आरव उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। शादी के बाद इतने दिनों में पहली बार दोनों बिना लड़ाई किए प्यार से साथ थे। दुबई में मिस्टर लूथरा सुबह सुबह अपने मैनेजर आतिफ के साथ गोल्फ खेल रहे थे। गोल्फ खेलते हुए वो दोनों अपने बिजनेस की और बाकी बातें भी कर रहे थे। कबीर ने आरव की मीटिंग के लिए आतिफ को मैसेज कर दिया था। पहले उन दोनों का पूरा ध्यान गेम में था। गेम पूरा हो जाने के बाद वो दोनों वहां ग्राउंड में रिलैक्स करने के साथ चाय पी रहे थे। चाय पीते हुए आतिफ ने सीरियस टोन में कहा, कबीर का मैसेज आया था, आरव खुराना आपसे मिलना चाहता है, लेकिन वो तो कभी मिलने से पहले इस तरह का मैसेज नहीं करवाता, नाहर लूथरा ने हैरानी से कहा। आतिफ ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, पहले और अब में बहुत फर्क आ गया है, पहले की बात अलग थी, उसने शादी करके एक तरह से माहिरा मैम के साथ सारे रिलेशन तोड़ दिए हैं, अब वो आपसे डायरेक्ट मिलने नहीं आ सकता, देखा जाए तो अब मिलने जैसा कुछ रहा भी नहीं है, माहिरा यहाँ नहीं है, छवि सिंघानिया को वो अच्छे से खुद हैंडल कर सकता है, फिर ऐसी कौन सी वजह आ गई जिसके चलते वो हमसे मिलना चाहता है, नाहर लूथरा ने चाय का कप नीचे रखते हुए पूछा। आतिफ कुछ पल के लिए चुप हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पूरी बात बताएं या नहीं, फिर उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, वो यहाँ अपनी पत्नी के साथ आ रहा है, मुझे नहीं पता कारण क्या होगा, लेकिन अगर माहिरा मैम यहाँ पर होती तो उस लड़की को देखते ही उसकी जान ले लेती। आतिफ की बात सुनकर नाहर लूथरा के चेहरे पर ईविल स्माइल थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं अपनी बेटी की ख्वाहिश अधूरी कैसे छोड़ सकता हूँ, ऐसा करो उन्हें मिलने की इजाज़त दे दो, आएगा तो वो अपनी पत्नी के साथ लेकिन जाएगा अकेले, मैंने उसे इतना बेवकूफ नहीं समझा था, वो अच्छे से जानता है कि अगर वो लड़की लूथरा फैमिली में से किसी के भी सामने आई तो वो उनकी जान ले लेंगे, फिर भी वो जानबूझकर उसे मौत के मुंह में लेकर आ रहा है, यही बात मुझे समझ नहीं आ रही, तभी मैं आपको बताने से हिचकिचा रहा था, जो भी हो आपने मिलने के लिए हाँ कह दिया है तो मैं उसे जवाब भेज देता हूँ, बाकी उनके वेलकम की सारी तैयारियाँ हो जाएंगी, आतिफ ने जवाब दिया और फिर उसी वक्त उसने कबीर को मैसेज किया। उसने कबीर को ये बताया कि मिस्टर लूथरा आरव और आयु से मिलने के लिए राजी है। अगली सुबह आयु की आंख खुली तो आरव उसके पास में सोया हुआ था। रात की याद आते ही आयु के फेस पर हल्की स्माइल थी। बिस्तर से उठने से पहले आयु आरव के पास खिसकी और उसके गाल पर हल्का सा किस करके बाथरूम में चली गई। बाथरूम के अंदर आते ही आयु ने जल्दी से अयान को कॉल लगाया। अयान के कॉल रिसीव करते ही आयु दबी आवाज में बोली, मुझे हॉस्पिटल आना है अयान, आई डोंट नो तुम कैसे मैनेज करोगे, लेकिन आरव को समझाओ मैं इस तरह घर पर नहीं रह सकती और तुम भी जानते हो कि तुम्हें भी मेरी जरूरत है। रियली छिपकली, तुम्हें सच में लगता है कि कल शाम जो भी हुआ उसके बाद भाई तुम्हें हॉस्पिटल आने देंगे? मुझे तो रिस्क नहीं लेना है। बाकी तुम हॉस्पिटल आना चाहती हो तो उनसे परमिशन लेने के बाद आ सकती हो। मैं इस मामले में तुम्हारी हेल्प करके उनसे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। अयान ने सीधे सीधे आयु की हेल्प करने से मना कर दिया था। अयान इस वक्त रायशा के साथ था। अयान की बातों से रायशा को समझते देर नहीं लगी कि आयु किस बारे में बात कर रही है। वैसे भी कल जब वो खुराना मेंशन में थी तब आरव आयु को हॉस्पिटल भेजने से पहले काफी तैयारी कर रहा था। रायशा ने अयान के हाथ से फोन लिया और फिर उसे स्पीकर पर करते हुए कहा, डोंट वरी भाभी, मैं आपकी हेल्प करूंगी। देखो तुम भाई से सिर्फ एक बार मिली हो, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उनके पर्सनल मामले में इंटरफियर करे, खासकर आयु और उनके मामले में, अयान ने रायशा को समझाते हुए कहा। फिर वो आयु से बोला, और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम दो तीन दिन घर नहीं रख सकती क्या? वैसे भी आज किसी की कोई सर्जरी शेड्यूल नहीं है और कल भी नहीं, दो दिन अच्छे से उनके साथ बिताओ और उन्हें खुद ही मना लो। यार तुम समझते क्यों नहीं हो, वो नहीं मानने वाला, आयु ने गुस्से में हल्की तेज आवाज में कहा। तभी उसे आरव की आवाज सुनाई दी थी जो दरवाजे के पास खड़ा था। उसने सख्त आवाज में कहा, बिल्कुल ठीक पहचाना मिसेस खुराना, मैं नहीं मानने वाला हूँ, अब चुपचाप बाथरूम से बाहर निकलो, तुम्हें कितना भी समझा दो तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। आरव की बात सुनकर आयु ने जल्दी से कॉल कट कर दिया और वो धीमे कदमों से बाहर आई। उसे देखते ही आरव ने सिर हिलाकर कहा, तो तुम्हें हॉस्पिटल जाना है, क्यों अपने आशिक की याद आ रही है तुम्हें?
ये तुम किस लैंग्वेज में बात कर रहे हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं बस अपने पेशेंट के लिए जा रही हूँ। मैं तुम्हें बोलूं कि तुम खुराना इंडस्ट्रीज मत जाओ तो तुम क्या मेरी बात मान लोगे जो मुझे जाने से रोक रहे हो? आयु ने हल्के गुस्से में पूछा। उसके इतने एफर्ट्स करने के बाद भी आरव मान नहीं रहा था। तुम एक बार बोल कर तो देखो, मैं नहीं जाऊंगा, आरव ने भौहें उठाकर कहा। वो अपनी तरफ से क्लियर था। आयु ने आरव की बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो उससे नाराज होकर बेड पर बैठ गई। तभी आरव उसके पास आकर बोलो, मैंने तुम्हें कहा था कि हम कहीं बाहर घूमने चलेंगे, हम दुबई जा रहे हैं, तुम पैकिंग शुरू कर लो। ये तुम बार बार दुबई क्यों जाते रहते हो? आयु ने हैरानी से पूछा। फिर उसे याद आया कि आरव ने उसे बताया था कि माहिरा दुबई से है, एजाज खान भी दुबई का ही माफिया था। सब याद आते ही आयु ने चिढ़ते हुए कहा, अब अपनी गर्लफ्रेंड की याद किसे आ रही है और कौन उससे मिलने के लिए मुझसे झगड़ा कर रहा है? माहिरा दुबई में नहीं है इसीलिए जा रहा हूँ, मुझे बहस नहीं चाहिए आयु, कल तुमने जो भी किया उसके बाद से मैं अब तक नाराज हूँ, तो ऐसा कुछ मत करो कि मेरा गुस्सा बढ़ जाए, आरव ने सख्त आवाज में कहा और बाथरूम की तरफ जाने लगा। वहीं आरव की बात सुनकर आयु हैरान थी। वो गुस्से में उठी और उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, रियली तुम अब तक मुझसे नाराज हो? तो रात को जो हुआ था वो क्या था? तब तो मुझे एक बार भी नहीं लगा कि तुम मुझसे नाराज हो या किसी बात को लेकर गुस्सा हो, रात को तो बड़ा चिपक कर सो रहे थे। हाँ क्योंकि तब नहीं था, लेकिन अब हो रहा हूँ। देखो अयान को बीच में इन्वॉल्व मत करो, तुम्हारी वजह से मैं उस पर गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ, पैकिंग करो, हम आज शाम ही दुबई के लिए निकल रहे हैं, आरव ने ऑर्डर देने के वे में कहा और फिर आयु को वहीं पर छोड़कर बाथरूम में चला गया। आयु के पास आरव की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, वो मुंह बनाते हुए पैकिंग करने में लग गई। वहीं फैज हॉस्पिटल में था, उसकी हालत में अब तक कोई सुधार नहीं आया था। एजाज खान और उसकी बहन हीना फैज की सिक्योरिटी का इंतजाम करके वहां से निकल चुके थे। उसकी सारी जिम्मेदारी छवि सिंघानिया ने अपने सिर पर ली थी, वो उसे दिन में दो बार मिलने आती थी। छवि सुबह सुबह फैज से मिलने आई हुई थी। फैज बोल नहीं सकता था लेकिन वो पलके झपकाकर या आईज रोल करके छवि की काफी बातों का जवाब दे देता था। छवि उसके पास बैठकर कॉफी पी रही थी। उसने फैज से कहा, वो आज हॉस्पिटल नहीं आई है, आरव को पता चल गया आप इसी हॉस्पिटल में हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो उसे हॉस्पिटल आने देगा। छवि की बात सुनकर फैज ने आईज रोल की, जिससे उसका मतलब था कि उसे आरव से कोई फर्क नहीं पड़ता। फैज की बात समझते हुए छवि ने आगे कहा, हाँ जानती हूँ आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तक उसने आपके बारे में उसे सब कुछ बता दिया होगा, आप आयु को जितना मासूम और सीधी समझ रहे हो वो उतनी भी सीधी नहीं है। छवि की बात के जवाब में फैज ने उसे तीखा लुक दिया। छवि ने तुरंत ही बात संभालते हुए कहा, हाँ पर दिल की साफ है। छवि फैज से बात कर ही रही थी कि तभी उसके रूम का दरवाजा झटके से खुला, ऐसे लगा जैसे गुस्से में किसी ने दरवाजा खोला हो, सामने अयान था। अयान ने अंदर आते हुए कहा, आपकी गाड़ी यहाँ देखते ही समझ गया था, अगर आपको इसकी बेबी सिटिंग से फुर्सत मिल गई हो तो घर जाकर आयशा को देख लीजिएगा, आप यहाँ बैठकर जिस इंसान के खिलाफ साजिशें कर रही हैं ना, अगर कल वो नहीं होते तो, अयान बोलते हुए रुक गया। फिर उसने फैज की तरफ देखकर कहा, और तुम मेरी फ्रेंड से दूर रहना। अयान आगे कुछ कहता उससे पहले छवि ने उसे चुप कराते हुए कहा, घर पर बात करते हैं अयान, ये राइट टाइम नहीं है, मुझे आपसे बात नहीं करनी है मॉम, मेरी ना सही रायशा की फिक्र कर लीजिए,
अयान गुस्से में बोलकर वहां से चला गया। अयान के जाते ही छवि ने फैज की तरफ देखा, जिसने आंखों के इशारे से उसे वहां से जाने को कहा। उसके वहां से जाते ही फैज की आंखों में चमक थी। उसने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा, तो हम आप दोनों के बीच आ ही गए, दूरियों की शुरुआत यहीं से होती है आरफ खुराना। ये फैज कितनी गलतफहमी में जी रहा है, ये जी ही क्यों रहा है।